संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जिस पर अपन को व्याख्यान करने हैं। जरा हम गंभीरता से विचार करें, हम शास्त्र लिखते हैं पर उस चिट्ठियों का भी महत्व नहीं पाते हैं। तोदरमल जी ने चिट्ठी लिखी और वो आज 250 वर्ष से शास्त्रों जैसी पूजी जाती है, पढ़ी जाती है। वैसे चिट्ठी किसे कहते हैं? एक आदमी दूसरे आदमी को लिखता है, लिखने वाला भी एक और पढ़ने वाला भी। ऐसी चिट्ठियां बहुत कम होती हैं कि जिसे हजारों हजारों लोग सैकड़ों वर्ष तक लगातार पढ़ें और जिन्हें कुंद कुंद के समय सार जैसा सास सभाओं में पढ़ा जाए। पंडित टोडरमल उन पंडितों में से थे कि जिन्होंने ये पत्र लिखा। इस पत्र के बारे में जो तत्वज्ञान की गहरी चर्चा इसके अंदर है उसकी बात तो आगे विस्तार से आएगी ही, लेकिन हम आरंभ से ही बात देखें कि वो किस तरह बात शुरू करते हैं। इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी के की महिमा बरतनी बढ़ने से बहुत से लोगों को ऐसा शौक हुआ, यानी जिनी साहब, कि वे भी हम भी ऐसी चिट्ठी लिखें कि जो भविष्य में पढ़ी जाया करें। और उन्होंने साधारण चिट्ठियों में भी ऐसी बातें लिखना शुरू कर दी, लेकिन आज तक तो कोई सफल हुआ नहीं कि जिसके वो पत्र इस पत्र जैसी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके हों। क्यों? क्योंकि ये इस भावना से लिखा गया पत्र नहीं है कि भविष्य में इस शास्त्र की जगह पढ़ा जाए। ये तो बस साधर्मियों के सहज भाव से प्रश्न थे और उनके उत्तर में लिखा गया पंडित जी की दृष्टि में एक साधारण सा पत्र था। ऐसे पंडित तो आपने इस जगत में बहुत देखे होंगे जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, पर ऐसे पंडित दुर्लभ हैं कि जिन्होंने शास्त्रों के साथ भी आत्मा भी पढ़ा हो। ऐसे पंडित भी कदाचित मिल जाएं कि जिन्होंने शास्त्र पढ़े हों और आत्मा पढ़ा हो, पर ऐसे पंडित मिलना बहुत दुर्लभ है कि जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े हों, आत्मा भी पढ़ा हो और सारी दुनिया को भी पढ़ा हो, दुनिया की नब्ज भी को जानते हों। महापंडित टोडरमल उन पंडितों में से थे कि जिन्होंने शास्त्र भी पढ़े थे, आत्मा भी पढ़ा था और दुनिया भी पढ़ी थी। उनकी इस विद्वत्ता की निशानी ये चिट्ठी है जो अपने आप हमें 5-6 दिन तक चलाएंगे, उसमें यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि उन्होंने दुनिया भी पढ़ी थी, शास्त्र भी पढ़े थे और आत्मा भी पढ़ा था। ये उस जमाने की चिट्ठी है कि जिस जमाने में आवागमन के कोई साधन नहीं थे और हम पैदल जाते थे या बैलगाड़ियों से जाते थे या घोड़े से जाते थे, बस आने जाने के साधन यही थे। जयपुर में पंडित टोडरमल जी रहते थे और मुल्तान नगर में कुछ जैनी भाई रहते थे। मुल्तान नगर आजकल पाकिस्तान में है, दूसरा देश हो गया है। उस जमाने में जयपुर से मुल्तान और मुल्तान से जयपुर आना कितना कठिन काम था। अब तो आज भी हो गया है, दो देश बच जाने की वजह से, और एक चिट्ठी डायरेक्ट पंडित टोडरमल को लिखी गई चिट्ठी नहीं थी, मुल्तान वालों ने किसी दूसरे गांव के साधर्मी भाइयों को चिट्ठी लिखी थी और उनने अपने को असमर्थ समझा उन प्रश्नों के उत्तर देना, तो उनने वो पत्र को पंडित टोडरमल के पास भेजा था उत्तरों के लिए। उस जमाने में भी जबकि आवागमन के साधन इतने कम थे, पंडित टोडरमल जी की प्रतिष्ठा इतनी दूर दूर तक सारे देश में फैल गई थी कि लोग अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए उनके पास आते थे और पत्रों द्वारा उनसे समाधान प्राप्त करते थे। एक इंद्रध्वज विधान पत्रिका नाम की पत्रिका टोडरमल जी के साथ नहीं रहने वाले उनके अभिन्न मित्र राजमल जी, ब्रह्मचारी साधर्मी भाई राजमल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें ये लिखा था, जिन जिन गांवों को वो चिट्ठी भेजी गई थी उनके भी मुख्य मुख्य नाम लिखे हैं, तो विदिशा, बासोदा, भोपाल, इतने दूर दूर तक के नाम उसमें लिखे हैं कि इन इन गांव में ये चिट्ठी भेजी गई। कैसे भेजी गई हो आप कल्पना करें, आदमी को भेजना पड़ता था और आदमी पैदल जाता था। उसमें ये लिखा है कि यदि केवल ज्ञान की महिमा जानना चाहो तो आके पंडित टोडरमल से मिलो। केवल ज्ञान किसे कहते हैं ये समझना हो तो पंडित टोडरमल से मिलो। हम उनसे मिले और हमने जितने भी प्रश्न किए वो सारे प्रश्नों का उत्तर एक गोमरसार ग्रंथ की साजिशों देते भये एक ग्रंथ के आधार पर देते गए, तो तब हमें मालूम पड़ा कि उनका ज्ञान कितना अपार है और केवल ज्ञान की महिमा क्या है। अब आप समझिए उस वक्त उनकी क्या प्रतिष्ठा थी। जब ये चिट्ठी लिखी गई थी तब टोडरमल जी की उम्र 33 साल की रही होगी। क्यों? पहले तो ये माना जाता था कि टोडरमल जी की उम्र 27 वर्ष थी और उसमें ही उनका स्वर्गवास हो गया था। यदि उस हिसाब से माने तो ये उम्र 8-9 वर्ष की ही बैठती है, जो कि संभव नहीं है। मैंने अपने शोध प्रबंध में अनेक युक्तियां और तर्क देकर यह सिद्ध किया है कि जब उनका स्वर्गवास हुआ तब उनकी उम्र 47 वर्ष थी। और ये कितना मजबूत प्रमाण मुझे मिला, अलीगढ़ के पास कोई छोटा सा गांव है, वहां पर एक शास्त्र था, उसमें ये लिखा था कि अवरत सम्यक दृष्टि पंडित टोडरमल जी 47 वर्ष की आयु पूरी कर स्वर्ग पधारिया। इतना स्पष्ट शब्दों में लिखा था। उनकी क्या पोस्ट थी वो भी लिखी थी और कितनी आयु में उनका स्वर्गवास हुआ वो बात भी लिखी थी। और मैंने उसको फोटो कॉपी उस पत्र की अपने शोध प्रबंध में छापी है। तो 47 वर्ष की आयु थी उनकी और उनका स्वर्गवास हुआ है 1823 या 1824 के दिवाली के 10-5 दिन पीछे। बस इतना किया है कि 23 में हुआ कि 24 में ये नहीं कह सकते, लेकिन हुआ दिवाली के 10-5 दिन बाद और 23 के पहले नहीं हुआ और 24 के बाद नहीं हुआ, क्योंकि 24 के बाद के प्रमाण उपलब्ध हैं कि उनका स्वर्गवास हो गया और 23 के तक के ये प्रमाण उपलब्ध हैं कि वे मौजूद थे। तो अब आप सोचिए जब वे 47 बरस के थे 23 या 24 में, और ये 11 में चिट्ठी लिखी गई, माने उनके स्वर्गवास के 12-13 बरस पहले लिखी गई। तो 47 में से 12-13 बरस कम कर दो तो 34-35 बरस की उम्र बैठती है। तो 34-35 बरस की उम्र में उनकी प्रतिष्ठा उस जमाने में जितनी दूर दूर तक फैल गई थी उससे मालूम पड़ता है कि वो कितना बड़े विद्वान थे। देखिए अपन पढ़ते हैं थोड़ी, उसमें की कोई बातें आई नहीं। सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधवी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडर मल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। ये चार नाम इन्होंने दिए क्योंकि जो चिट्ठी वहां से आई थी इनके पास उसमें चार लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने ये प्रश्न भेजे थे और उन्होंने ये लिखा था कि हमारी गोष्ठी चलती है, उस गोष्ठी में इन प्रश्नों पर हमने बहुत चर्चा की लेकिन हमारा समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम ये पत्र आपको लिखते हैं। इसलिए उन्होंने उत्तर में भी ये लिखा, चार के नाम लिखे और बाकी लिखे तो बाकी और साधनवी भाई, मानो सभा के जो और लोग हों उन सब के लिए। और बाद में ऐसा भी लिखा इसमें कि ये सभा में सबको बता देना ये बात। यहाँ यथा संभव आनंद है तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। एक वाक्य तो इसमें ये लिखा कि टोडरमल जी के प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना, क्यों नहीं लिखा जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार, नमोस्तु, बहुत शब्द थे, शब्दों की क्या कमी थी। स्पष्ट उल्लेख कर देते कि वे नमस्कार कर रहे हैं कि वंदना कर रहे हैं कि जय जिनेन्द्र कर रहे हैं कि जोहार साहब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि उस पत्र को पढ़कर उन्हें ऐसा लगा कि उस सभा में मेरे से ज्यादा ज्ञानी लोग भी हो सकते हैं और साधारण लोग भी हो सकते हैं, अब उन सबको एक साथ एक से विनय के शब्द कैसे लिखे जा सकते हैं, उन आशीर्वाद भी देना है और नमस्कार भी करना है। इसलिए पुराने जमाने में जो चिट्ठियां लिखी जाती थी उसमें ये लिखा जाता था यथा योग्य अभिवादन, यथा योग्य सादर जोहार लिखा जाता था, क्या नहीं? तो यथा योग्य माने जो जिस लायक हो, बड़े हो तो उन्हें हमारे नमस्कार से मिल लेना, हमें तो मालूम नहीं कौन कौन बैठे हैं, छोटे हो तो उन्हें आशीर्वाद से मिल लेना। यहां तक कि अंत में एक दोहा लिख दिया जाता था कि चिट्ठी बातचीत के समय जो जन बैठे हो हे जोहार सब जनन को जो जी लायक हो। जब आप चिट्ठी मेरी पढ़ें उसमें जितने लोग बैठे हों वो सुन रहे हो उन सबको मेरा नमस्कार है, एक कैसा कि जो जी लायक हो, जो आशीर्वाद देने लायक हो उसे आशीर्वाद है, जो प्रणाम करने लायक हो उसे प्रणाम। सुमति जी एक घटना सुनाता हूं मैं आपको बहुत मारने, जब मैं करीब 10-12-13 वर्ष का रहा होऊंगा मुरैना विद्यालय में पढ़ने चला गया था और वहां संस्कृत पढ़ता था, शास्त्री होने वाला था, तो मैं अपने गांव में आया। हमारे गांव में जो शादियों के पत्र आते थे ना तो पंडित जो ब्राह्मण पंडित तो पढ़ता था वो लग्न पत्रिका, और हमारे पिताजी को बुलाया जाता था उसके साथ में आई हुई चिट्ठी पढ़ने के लिए। वाल्टन जी साहब उसने प्रतिष्ठा थी, स्पेशलिस्ट थे वो, मैंने लग्न पत्र का तो बड़े ब्राह्मण पंडित नीतीश भाई, और वो चिट्ठी पढ़ने के लिए हमारे पिताजी को बुलाया जाता था। विद्यालय में पढ़ते थे, एक दफे वो नहीं थे, कहीं बाहर गांव गए थे, और भाग्य से मैं गांव में था तो उन्होंने कहा भाई ये तो संस्कृत पढ़ते हैं, बड़े विद्वान पंडित बन रहे हैं, अपन इनसे ही पढ़वा ले वो चिट्ठी क्या। हमसे कहा तो हमने पढ़ी वो चिट्ठी, तो चिट्ठी पढ़ी इतना झगड़ा हो गया कि सब लोग नाराज हो गए उसको चले गए। क्यों हमारा नाम तो लिखाई नहीं है, हमारा नाम तो लिखाई नहीं है, हमें तो कुछ कहा ही नहीं है, हम नहीं मानते इनको, सब गांव के पंच थे ना, सब नाराज हो गए। इतना पिताजी आ गए तो उनसे कहा कि सेठ जी ऐसा ऐसा हो गया, तो मैं क्यों हुआ क्या कि किसी के नाम ही नहीं निकले चिट्ठी में, सब पंच नाराज हो गए, तो कौन कहता नहीं है घर लाओ मैं पढ़ू। और उन्होंने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते सामने बालचंदी साहब, नैनीचंदी साहब, भागचंदी साहब, बराबर महावीर प्रसाद जी बराबर बोलते बोलते सब के नाम निकले उस चिट्ठी में, सब खुश एकदम बताओ देखे बैठ गए। मैं भी कहा कि क्या हो गया, मैं इतना मूर्ख तो नहीं। मैंने घर में आकर के पिताजी से कहा ये क्या हुआ, ये नाम थे उस चिट्ठी में, इतनी सी चिट्ठी तो तुमने 150 नाम दे दिए, ये लिखा है उसमें, ऐसी बोलते बोले तो नहीं है झूठ पढ़ते हो, बोले नहीं है लिखा है उसमें। और जब उन्होंने मुझे बताया तो एक दोहा लिखा बताया मुझे उसी दिन याद हो गया, कौन सा, चिट्ठी बाँचत के समय जो जन बैठे हो हे जोहार उस जनन को जो जी लायक हो। तो मैंने क्या किया, इसी की व्याख्या तो की है, आचार्य लोग करते हैं कि नहीं करते, जो जी लायक हो सबको जोहार है, तो मैंने सब बड़ा बोल दिया, भालचंद जी साहब को नमस्कार और बच्चों को जोहार और उनको आशीर्वाद और उनको सब बोल दिया, ये लिखा है ना इसमें, मैंने उनके एक एक वाक्य में कितना विवेक होता था, क्योंकि वो चिट्ठी पुराने जमाने में अकेले एक आदमी के लिए नहीं लिखी जाती थी, एक समाज दूसरी समाज को लिखती थी। यदि शादी की पत्रिका भी हो तो लड़की वाला लड़के वाले को नहीं लिखता था, बल्कि लड़की वाले गांव की पूरी समाज, लड़के वाले की गांव की पूरी समाज को लिखता था, पर सारी जिम्मेवारी समाज निभाती थी। तो पंडित डोडामल जी में वो शब्द यथा योग विनय मेरी तरफ से जिसके जयदायक हो, इसमें आशीर्वाद भी आ गया और इसमें नमस्कार भी आ गया, जो भी व्यक्ति उस सभा में हो, सभा में श्रोता तो कई प्रकार के हो सकते हैं, आप कहो कि यदि डोडामल जी से बड़े विद्वान सभा में होंगे, ऐसी कल्पना जो आप कर रहे हो वो बात सही नहीं है, होते तो वही जवाब दे देते। यहां काय को पत्र आता, बोलो मैं नहीं होंगे, लेकिन गांव का बोलते ना, अपने गांव को डोगी डोगना और आन गांव का सिद्ध, कभी कभी वो गांव का पंडित जवाब दे दे रहे हैं तो आप नहीं माने क्यों, और बाहर का पंडित उससे कम भी जानता हो और वो जवाब दे देगा तो आप मान लें, होता है कि नहीं होता बोलिए। इसलिए हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये जो प्रश्न आए हैं इनका उत्तर वहां कोई जानता नहीं होगा, कल्पना भी हो तो पंडित टोडामल जैसे विद्वान स्वीकार नहीं कर सकते, वो एक आते नहीं शब्द के ज्ञानी धर्मात्मा उपलब्ध हैं, हम उनका सही लाभ नहीं उठा पाते हैं। देखो क्या लिखते हैं, यहां यथा संभव आनंद है, उन अतीन्द्रिय आनंद की बात है, क्योंकि तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अब चिदानंद घन के अनुभव से और सहजानंद की वृद्धि चाहिए, एक तो ऐसा आनंद है कि जो घटता बढ़ता नहीं है, त्रिकाली आनंद, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, चिदानंद है ना त्रिकाली, और उसका धन एकदम पिंड, उसमें ठोस ऐसा जो भगवान आत्मा जो ज्ञान और आनंद का पिंड, वे मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूं, चित्त माने ज्ञान और आनंद और उनका घन पिंड, ऐसे आत्मा का तुम अनुभव करो तो जो सहज आनंद आत्मा देह होगा सम्मदर्शन में होने वाला, वो आनंद की तुम्हारे को वृद्धि चाहिए। वृद्धि चाहिए का मतलब क्या, वो आनंद तुम्हें प्रकट हो ऐसा क्यों नहीं लिखा पद्मनी साहब। भैया हम ऐसा कहके हम उनका अपमान नहीं करना चाहते, तुम्हारे ऐसा आनंद प्रकट हो ऐसा कहने का अर्थ क्या है बोलो, कि तुम अभी मिथ्या दृष्टि हो। तो हम सबको मिथ्या दृष्टि मानने को तैयार नहीं है, घोषित तो कर ही नहीं सकते। तो आनंद की उत्पत्ति माने संभव, आनंद की वृद्धि माने निर्जरा और आनंद की पूर्णता माने मोक्ष, तो मोक्ष भी नहीं मान सकते और अभी तुम्हें पैदा ही नहीं हुआ है ये भी नहीं मान सकते। तो पैदा तो हो गया है, थोड़ा बहुत बढ़ भी गया हो तो और बढ़े, अनुवृत्ति हो तो महावृत्ति हो जाए, सम्मा दृष्टि हो तो अनुवृत्ति हो जाए। तो तुम्हें क्या चिदानंद घन के आश्रय से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। बात तो सीधी सच्ची है, जब उन्होंने अपने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपको ऐसा भला हो, लेकिन इतनी सीधी सच्ची बात है नहीं, इसमें उन्होंने पूरा समय सा लिख दिया समझने वाला हो कि सहजानंद की प्राप्ति वृद्धि और पूर्णता चिदानंद घन के आश्रय से होती है, पर के आश्रय से नहीं होती, देवशास गुरु के आश्रय से नहीं होती, तीर्थों के आश्रय से नहीं होती, क्रियाकांड के आश्रय से नहीं होती, पूजा पाठ से नहीं होती, दानादिक से नहीं होती। ये जितने नहीं होते निकालना हो निकाल लो, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो, जिन जिन चीजों से तुमने आनंद की प्राप्ति मान रखी हो वो उन उनसे नहीं होती ऐसा समझ जाए। आगे ना पूरी बात समय सार में और क्या बताया मुझे आप बताओ। एक तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर से भिन्न पर्याय से भिन्न, वो चिदानंद घन है और उसके आश्रय से उसके अनुभव से, तो अनुभव में तीन चीजें शामिल हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। कैसे सुनो, पर से भिन्न वो अपना भगवान आत्मा को जानना, वो हमारे ज्ञान का गेय बने और फिर उसमें ही अपनापन हो जाना, इसका नाम भी अनुभव है। वैसे इसका नाम है सम्मा दर्शन है वैसे, और ऐसा जानकर यही मैं हूं पर मैं नहीं हूं, ऐसी श्रद्धा पूर्वक ऐसा जानना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान, उसे भी अनुभव कहते हैं। और दुनिया की झंझटों से उपयोग को हटाकर उसको ही जानते रहना, उसको भी अनुभव कहते हैं। एक अनुभव तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन एक दूसरा अनुभव है जो लोग नहीं जानते हैं। मैंने एक आध दो जगह लिखा भी है, बोला तो कई दफे है। एक अनुभव तो ये कि जब अपना उपयोग सारे पर पदार्थों से हटकर अपने आत्मा पे जाता है ना, और उसमें हमें अपनापन आता है, समझो आनंद की कणिका जगती है, बोलते ना रोमांच हो आता है, जिसका वर्णन आपने बहुत सुना होगा। एक तो वो अनुभव, तो वो कहते क्षणिक होता है फिर उपयोग बाहर आ जाता है। अब एक दूसरा अनुभव कौन, कि वो जो अनुभव हुआ आपको उस समय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को आपने अपना माना, जिसके कारण सम्मा दर्शन प्रकट हुआ, अब उपयोग बाहर आ गया तो उसे अपना मानना छूट गया क्या, बोला नहीं छूटा। अच्छा, और उसे जानना छूट गया, उपयोग बाहर में आ गया लेकिन लब्धि ज्ञान में अभी उसे जान रहा कि नहीं जान रहा। अच्छा, और उसको जो अनंतानंदी कषाय का अभाव हो गया उसकी वजह से जो शुद्धि उत्पन्न हो गई, अब वो अभी कायम है या चली गई? तो तीनों चीजें कायम है ना, श्रद्धा ज्ञान और चरित्र की निर्मलता, और तीनों का नाम यदि अनुभव है तो अभी अनुभव अभी भी कायम है। खाते पी खाते वक्त, चलते वक्त, बिकते वक्त, सब इसको कोई अनुभव नहीं मानता। वैसे जगत में तो इसको ही अनुभव कहते हैं, बोलते हैं ना कि आपको कितने साल का अनुभव है, गंदे पानी का, नौकरी का, पढ़ाने का। जैसा मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं पोस्ट डिग्री कॉलेज में, तो मुझे 20 साल का अनुभव है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो 20 साल में हमेशा 24 घंटा पढ़ाते ही रहे होंगे, या साल में मुझे 100 पीरियड लिए होंगे 365 दिन में, और जनभा थोड़ी पढ़ाते रहे क्यों? तो जब पढ़ाते रहे वो भी, और नहीं पढ़ाते रहे वो भी, वो काय में गिनते हैं। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, बोलते कि नहीं बोलते? हम रोटी भी खा रहे तो पढ़ा रहे हैं, क्यों? कि पढ़ाने के लिए खा रहे हैं, यदि नहीं खाएंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। समझे ना कि माने हम पढ़ रहे हैं तो काय के लिए? पढ़ाने के लिए। हम रोटी खा रहे हैं तो काय के लिए? पढ़ाने के लिए। समझ में आया ना? तो वो उसको 20 साल का अनुभव मानते हैं, जो 20 साल से कंटिन्यूशन में हमें पढ़ा रहे हैं, है ना? तो ऐसे वो तीनों चीजें कायम हैं, तो उसको भी बोलते हैं कि हमें अनुभव है। एक वो अनुभव कि जब उपयोग अपने आत्मा में लगा है तब, एक वो पढ़ाना कि जब हम पढ़ा ही रहे हैं। इसमें तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम बीच में पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछता ना विद्यार्थियों से, तो अभी तो पढ़ा कहां रहे, अभी तो पूछ रहे क्या? फिर आपकी विद्यार्थियों को कॉपी जांच रहे तो पढ़ा, अभी पढ़ा कहां रहे, अभी तो कॉपी जांच रहे। लेकिन ये सारी चीजें पढ़ाने में शामिल है क्या? नहीं है। परीक्षा ले रहे, कॉपी जांच रहे, क्यों? सब पढ़ाने में है ना। तो ऐसे ही अगर आगे बंद करके बैठ गए और उपयोग अंदर चला गया, नकली नहीं बैठ गए, असली, तो अकेले उसी का नाम अनुभव नहीं है। अब देखिए कैसा, कहां बात करते हो, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, कहां वो अनुभव कि जिसमें अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगती है, रोमांच हो आता है, और कहां रोटी खा रहे, पी रहे, युद्ध कर रहे, शादियां कर रहे, इस काल में भी आप कह रहे अनुभवी हो, इन दोनों में कितना फर्क है? है ना मोर कौड़ी का अंतर? नहीं है। राशि जी क्यों नहीं है? तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो 41 प्रकृतियों की बंद में छुट्टी हो गई, जो भी 41-42 जो भी हुई हो, तो वो अनुभव के काल में तो नहीं बनेगी? जगदीश भाई रोटी खाते समय तो बनना शुरू हो जाएंगे, युद्ध लड़ते वक्त तो बनना शुरू हो जाएंगे, शादी करते वक्त तो बनना शुरू हो जाएंगे, तो नहीं होंगी, तो मुफ्त में नहीं होंगी। वो कर्म का बंध नहीं हो रहा है तो उसका कारण उसकी आत्मा में प्रकट रूप से उस समय विद्यमान है। तो क्या फर्क रहा? अच्छा, इन दोनों को हो रहा है, कमी तो कुछ नहीं है, तो अधिकता कुछ होगी ना? तो 41 में से 43 की बंद में छुट्टी हो गई होगी अनुभव के काल में, और फिर 42 रह गई होगी। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ा, समझे ना? सामायिक के काल में और रोटी खाने के काल में, युद्ध लड़ने के काल में, सम्यक दृष्टि के कौन कौन से कर्म बंधेंगे, आचार्य कहते कोई फर्क नहीं है। और हम क्या मानते हैं? अरे अरे कैसे भाग कर रहा, कितने कितने छोटे छोटे कर्म बांध रहा, और जरा सा जय जयनाथ कर्म गुरु हो करने लग जाए, हाँ बहुत 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 बल गलिए छूटने लगती है, मैंने तो बहुत बड़ा धर्म कर लिया। करुणाम योग का कितना जबरदस्त आधार है, हैं? उसमें ऐसा भेद नहीं किया, वो उसी समय से धर्मात्मा है। हाँ, कब? जब उसे संबंध की प्राप्ति हो गई और उससे एक समय को भी आत्मा उसके ज्ञान का ध्येय न रहे, आत्मा उसमें अपनापन नहीं रहे, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये तो निरंतर रहने की चीज है भाई साहब। तो कहते हैं वो अनुभव तो तुम्हारे है ही, हमें तो उस अनुभव में वृद्धि चाहिए। अब वृद्धि क्या है? तो वो ये कहते हैं कि वृद्धि क्या है कि अभी अनंतानंदी के साथ गई है, अब प्रत्याख्याना वर्ण और जाए, प्रत्याख्याना वर्ण और जाए तो वृद्धि है। लेकिन ये तो बाहर का नाप है कि अनंतान अप्रत्याख्याना बन गई कि प्रत्याख्याना बन गई। अंतर में ऐसे परिणाम की निर्मलता बढ़ी, अथवा ऐसा समझ लीजिए कि आत्मा का जो अनुभव वो उपयोग वाला, आत्मा का उपयोग आत्मा में है, उसका वियोग काल कम हुआ और योग काल में वृद्धि हुई। समझ में आया? फिर कहता हूं, पहले समय जब आत्मा का अनुभव हुआ था तब एक सेकंड को आत्मा का ज्ञान उपयोग आत्मा में आया था और फिर छह महीना तक नहीं आया, फिर छह महीना में एक सेकंड को आया, फिर छह महीना तक नहीं आया। अब क्या हुआ कि वो छह महीने का वियोग काल चार महीना रह गया, चार चार महीने में आने लग गया और वो आधा सेकंड का एक सेकंड हो गया। तो कहते अनुभव के काल में वृद्धि और वियोग काल में हानि, इसका नाम है शुद्धि की वृद्धि। और जैसी जैसी आत्मा में होगी परिणामों में, वैसी वैसी वहां कर्मों में, वहां भाव बाहर में अनंतान अप्रत्याख्यानापन कर्म कसाई की चिंता होगी उसके अनुपात में। तो कुरंद जी राय साहब लिखते हैं कि चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अब मुझे बताओ पूरा मोक्ष मार्ग मोक्ष किसमें हुआ कि नहीं हुआ? यदि हो गया तो समय सार में इसके अलावा और क्या कहा? छठवी सातवीं गाढ़ा में पूरा समय सार कैसे हो गया? ऐसे ही तो हुआ है ना, पंद्रहवें कलश में जो उन्होंने कह दिया ना क्या कि एक आत्मा ही, चाहे साध्य भाव से चाहे साधन भाव से, उसकी एक आत्मा की ही उपासना करो। लगा क्या लगा? नित्य एवं समुपासताम साध्य साधक भाव ने विधेय के दो प्रकार से एक आत्मा को ही साधन करो। दस ज्ञान त्रिप्राणी से दिव्यानी साहुना निचम दस ज्ञान चारित्र का सेवन सेवन चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। ये समझ लो उन्हें नमस्कार किया, आशीर्वाद दिया उन्हें, और उसमें चाहे ऐसा कहो कि द्वादशांग भर दिया। एक एक कहते ज्ञानी की बात बात में द्वादशांग है। हमारी क्या हालत है? कोई लड़की आए हमारे चरण छुए, हाँ खुश रहो बेटा दूध और दी फलो, क्या बोलते हैं दूध है फलो और दूध है बोलते हैं, तो बोलना भी नहीं आता। क्यों? कि तुम्हारा खूब धंधे में तरक्की हो, तुम बहुत हो जाओ, राजनीति में हो तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, धंधेबानी में हो तो तुम और अरबपति हो जाओ, नौकरी कर रहा हो तो सबसे बड़े ऑफिसर बन जाओ। हमारा तो आशीर्वाद देने का तरीका ही है, पर हम उसी को सामने वाले को लगता है कि हमें कुछ दिया। यदि हम ऐसा कहें कि सहजा चिदानंद के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए तो कह के पागलपति हो गया है। तो क्या है इसका अर्थ? तो ये बता रहे पूरा समय सार इसका अर्थ है। तो ये चिट्ठी वैसी पढ़ना हुआ जैसे हमारे पिताजी ने पढ़ी थी कि चिट्ठी बांटत के समय जो जन बैठे हों है जोहार सब जनन को, कि उन्होंने अपने इस पत्र में जो किनको लिखा था मालूम, जिन्हें वो जानते तक नहीं, अभी आगे आएगा जिसमें ये लिखा कि तुमने जो प्रश्न लिखे हैं वो फलान जगह भेजे थे और वहां से उनने मुझे भेजे हैं, माने जिससे सिद्ध होगा कि डायरेक्ट उनके पास नहीं आए हैं। जब आएगा तभी अपन देख लेंगे उसे, कौन से पित्र लास्ट वाले पे वहां कैसे होगा, वहां तो नहीं होना चाहिए। मान लो जब आएगी, जब आ जाएगी, क्यों उसमें अपने समय खराब करें कि उन्होंने को डायरेक्ट ये पत्र नहीं लिखा गया था। भाग्य की बात यह है कि जो उत्तर में उनने पत्र लिखा वो तो अपने पास है, लेकिन जिस पत्र का जो उत्तर लिखा वो पत्र अपने पास नहीं है। तो इस उत्तर में से अपन को ये निकालना है तो वो पत्र जो आया होगा उसमें क्या लिखा था। क्यों एक प्रश्न ऐसा दिया जाना चाहिए सबको कि जिस प्रश्न के उत्तर में ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी गई वो पत्र कैसा होगा, उस पत्र को आप लिख के लाइए। आता ना पिताजी को पत्र लिखो, गुरु जी को पत्र लिखो, क्यों है? यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता? मैं ये कहता हूं कि एक पत्र जो उपलब्ध है, जो उत्तर लिखा गया है, तो इसमें जो पत्र आया होगा वो पत्र बना हुआ जिसके उत्तर में बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्यों उत्तर से हमको मालूम पड़ जाएगा ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं उन लोगों को, किन लोगों को, जिनके वो कभी साक्षात मिले नहीं थे, जिन्हें वो जानते नहीं थे, जिनसे उन्होंने डायरेक्ट पूछा नहीं था, जिनने पूछा था उनने अपने प्रश्न नहीं पूछे थे, दूसरों के प्रश्न, क्या उनकी चिट्ठी हमारे पास आई है तो उस पत्र में मैं आपके पास भेजता हूं क्योंकि उत्तर हमारे को मालूम नहीं है उनका, और उसके उत्तर में उनने वहां पर ये चिट्ठी लिख करके भेजी। ऐसे लोगों को वो लिखते हैं चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री सारी जीवन भर 45 वर्ष तक लगातार आत्मा आत्मा समझाते रहे, और कई दफे तो हमने भी देखा है, मद्रास का पंत कल्याणक था और सारे तमिलनाडु के लोग बैठे थे, बड़ा नाम था ना, तो आ गए थे सब बैठे थे, जो हिंदी का अक्षर नहीं जानते, गुजराती का अक्षर नहीं जानते, आके बैठे थे और गुरुदेव ने वो शुरू किया त्रिकाली द्रु भगवान आत्मा। हमको ऐसा लगे क्या कर रहे हैं, अरे यहाँ तो सरल सरल बातें बताना चाहिए, इन्हें तो नमो कारण सुनाना चाहिए, इन्हें क्या। तो उस वक्त हमको ऐसा लगा कि जैसे बीबी गुरुदेव को व्यवहार आता नहीं है, क्योंकि व्यवहार से दूर है जिंदगी भर से, 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा लगी, उन्हें क्या पता व्यवहार क्या होता है, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, हम होते तो हम। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारी समझ में आया कि उनका कहना तो ये है कि हमारे पास तो ये माल है, तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो नहीं लो, समझ में आए तो ये है और नहीं समझ में आए तो, और हम क्यों नहीं आएगी समझ में, तुम भगवान हो ना, जब शेर की समझ में आई थी तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आएगी। ये मुनिराज सोचते क्यों कि इस शेर को क्या समझाएं, ये थोड़ी तो क्या होता बोलो, उसे देश में लब्धि नहीं मिलती, समझ नहीं होता। जब मैं तीर्थंकर भगवान और महावीर एक किताब लिख रहा था तब कितने वर्ष पहले, 72-73 में, कितना हो गए, 32 वर्ष हो गए, तो उस वक्त मेरे को ये बहुत विकल्प आया बालचंदी साहब कि मुनिराजों ने उस शेर को समझाया होगा तो क्या समझाया होगा, कि वो मैं बहुत शास्त्र पढ़े कि उसमें क्या लिखा, बहुत जगह ऐसा लिखा था, हे शेर तू तो भगवत का तीर्थंकर है, तू तो महावीर तीर्थंकर होने वाला है, तू तो मोक्ष जाने वाला है, तू ऐसा कुकर्म क्यों कर रहा है। मेरे को नहीं देती कि वो क्या जाने तीर्थंकर, क्या जाने मोक्ष, क्या जाने कुकर्म, क्या समझ रहा होगा, और इससे सम्मा दर्शन हो गया। सम्मा दर्शन होने के लिए देशना लब्धि में तो त्रिकाली तो भगवान आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए, बताना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई वो त्रिकाली ध्रुव तो समझ नहीं पाएगा ना, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा होगा। फिर मेरे को प्रश्न अंदर से आया, ये कौन सा समझ पाएगा, जैसे त्रिकाली ध्रुव और जैसे तू भविष्य का तीर्थंकर होने वाला है, उसके लिए तो दोनों ही बातें एक सी है ना। इसलिए अपन को तो यहाँ उन मुनिराज के मुख से शेर को उपदेश देने के लिए वही बात लिखना चाहिए जो सम्मा दर्शन में निमित्त बन सकती है। तो प्रेस में रातों रात किताब छप रही थी, क्योंकि महा भगवान महावीर के धर्म चक्र में ले जानी थी किताब। तो रात के जाकर के 2 बजे मैंने प्रेस में से मशीन पर से किताब उतरवाई और फिर वो 2-3 पेज उपदेश लिखते और वहां उसमें जोड़ा। ऐसे ही ब्रह्मदेव जो भगवान महावीर की स्थिति कर रहे हैं, वो है ना, उनका मिथक चला गया, तब भी निकल पाया कि किन शब्दों में की होगी, तो वो भी मैंने मशीन पर से उतरवा के 4 पेज लिख करके उसमें जोड़ी थी 30-35 साल पहले। इसका विचार नहीं करना कि ये समझेगा कि नहीं समझेगा, हमें तो वो ही समझाना जो आत्मा के कल्याण के लिए डायरेक्ट निमित्त हो। मैं आपसे पूछता हूं, कोई आदमी एमए पढ़ा रहा है, एमए की क्लास में कोई आदमी संस्कृत वाला पहुंच गया, हिंदी पढ़ा रहा, अंग्रेजी वाला पहुंच गया और उसे एक अक्षर नहीं आता है, तो क्या करे प्रोफेसर, अंग्रेजी पढ़ाने लगे हिंदी छोड़ के? गणित की क्लास में कोई बायोलॉजी का आदमी पहुंच गया तो क्या करे, वो बायोलॉजी पढ़ाने लगे गणित छोड़ के? नहीं समझता और आया है तो वो आया है गलत जगह, हम क्या करें? वो तो कहते हैं हम तो यही बताएंगे, चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए और हम तो आशीर्वाद भी ऐसे ही देंगे, बाल बच्चे जो हो जाए, रुपया पैसा हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, हम तो ऐसा आशीर्वाद भी नहीं देंगे, क्योंकि ये आशीर्वाद तो कहते रहे मोसे के खुश रहो, लेकिन ये आशीर्वाद दुखी रहने का है। क्यों? ये परिक्रमा बढ़ जाएगा क्या तो सुखी होगा या दुखी होगा? ऐसा तो नक्की कर लो कि हम तो ये लिखेंगे तो यही लिखना, दुनिया कुछ भी कहती रहे, और ये औपचारिकता में तो रहने दो, वो तो चालू रहने दो, हमारे बाप दादों ने इतना तो बचा के रखा था, ये चिट्ठी लिखते थे ना, तो लिखते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु, क्या अंत में लिखते थे शेष सब, हमने सब बंद कर दिया। अरे भाई इसका अर्थ आज नहीं तो कल कोई समझेगा। तो पंडित जी ने उन अपरिचित लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे प्रश्न लिखे थे कि जिन्हें अभी हम पढ़ेंगे, अभी अभी माने 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे, तो उनसे अपन को ऐसा लगेगा कई प्रश्नों से कि इतनी बात नहीं समझते थे, यदि इतनी बात नहीं समझते थे तो वे सम्मा दृष्टि नहीं हो सकते, मिथ्या दृष्टि है अज्ञानी। लेकिन उनको भी उन प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं और चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए ये आशीर्वाद भी यही दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको आशीर्वाद वैसा दे दें, क्योंकि वे तो ऐसे ही लोग हैं, चालू लोग हैं, ऐसा नहीं। तो उन्होंने एक एक वाक्य में वो आत्मा की और सहजा की बात है, इसलिए ये आकर के शास्त्र बन गया, ये कोई मुफ्त में शास्त्र नहीं बन गया। कोशिश तो लाखों लोगों ने की, लेकिन इस कलकत्ता का सौभाग्य है कि यहां के भी एक व्यक्ति के पत्र शास्त्र बन गए, निहाल जी सोगानी का है ना, यानी धर्मात्मा तो वे थे ऐसा तो सब कुछ गुरुदेश जी ने कहा है, लेकिन उनके पत्र भी किताबों के रूप में छपे और किताबों के रूप में ही वो पढ़े गए। मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी से उनकी उनकी तुलना करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने वो स्थान तो पाया ना है? जो और सैकड़ों लोगों ने कोशिश करके भी नहीं पा पाया, क्योंकि वो इसलिए ही थे। अपने एक शास्त्र में आता है, पंचरत्न में कहानी आती है कि एक राजा के घर मुनिराज आए आहार लेने, क्योंकि मुनिराज रिद्धिधारी थे, तो उनका आहार हो गया तो वहां रत्नों की वर्षा हुई। उसी समय में एक नाई राजा के बाल बनाने आया था। अब राजा तो उसमें लग गए, तो वो बैठा था कि निपटे तो मैं बाल बनाऊं, तो उसने ये सब देखा। क्या? तो उसने कहा कि अरे इन नंगों को आहार देने से तो रत्न बरसते हैं, जिंदगी होगी दुर्गता चली जाए। तो उसने जाकर के तरकीब से वो विधि सीखी आहार दान की और पढ़ाया मुनिराजों को और अपने घर में ले गया और गरम गरम खीर बनाई थी। तो महाराज के ऐसे हाथ में ऊपर से खीर डाली और ऐसा ऊपर दिख गया, खीर डाले हाथ में तो देखे ऊपर, अब रत्न बरसे, अब रत्न बरसे। बोलो, रत्नों की वर्षा का इतना लोभ पुण्य भाव है कि पाप भाव। उसके पुण्य महाराज के तो हाथ जल गए, गरम गरम खीर एकदम डाल दी, थोड़ी बहुत भी नहीं एकदम डालते ही गया है? तो पत्थर बरसेंगे ना। ऐसे ही नकल की इस भावना से कि मैं यदि ऐसा करूंगा आहार दूंगा तो मेरे को ये लाभ होगा, मैं पत्र लिखूंगा इसमें आत्मा फात्मा लिख दूंगा बीच बीच में तो ये मेरे पत्र भी छप जाएंगे, ऐसी भावना से ही वो पत्र लिखे उसमें, तो वो गारंटी से छपने वाले नहीं है। निहाल जी ने भी इस भावना से नहीं लिखी, कल्पना भी नहीं की होगी उनने कि कभी ये पत्र छापे जाएंगे। बोलो, तो इसलिए ये ऐसा महत्वपूर्ण पत्र है, नाम कहने को तो पत्र है दे चिट्ठी है, लेकिन इसमें कितना तत्व ज्ञान भरा हुआ है उसकी चर्चा अपन आगे।